ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण कर जनता की जीवन रक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। नेपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या पहुंची 1 लाख से ऊपर। संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या हुई 600। कोरोना वायरस की पुष्टि होने पर आइसोलेशन में ना रहने वालों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी। और साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि कोविड-19 का रोकथाम और नियंत्रण कर जनता की जीवन रक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गैर आवासीय नेपाली संघ NRN की दूसरी ज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल रूप में उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने साफ किया कि कोविड-19 के कारण खाद्यान्न आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने देश में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों ही क्षेत्रों से कोरोना विरुद्ध की लड़ाई में नेपाल की बहुमूल्य जड़ी बूटियों का प्रयोग होने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम चाहे कहीं भी रहें, हम नेपालियों के लिए बीच में एकता जरूरी है। मौके पर गैर आवासीय नेपाली संघ के अध्यक्ष कुमार पंत ने विदेशों में प्राप्त ज्ञान, सीप और निवेश देश में ही उपयोग करने के लिए उचित वातावरण बनाने का सरकार से आग्रह किया। सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, विदेश स्थित नेपाली राजदूत और विभिन्न विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदि की सहभागिता रही। 5 दिनों तक चलने वाले इस विश्व ज्ञान सम्मेलन में विभिन्न 30 देशों के 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने प्रतिनिधित्व किया था। आज देश भर में 2059 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या 1,676 हो गई है। आज विभिन्न 56 जिलों के 732 महिलाओं और 1,327 पुरुषों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज 1,680 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या 73,023 पहुंची है। आज 10 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण होने के बाद संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 600 पहुंची है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ. जागेश्वर गौतम ने दी। मंत्रालय ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यदि आइसोलेशन में नहीं रहे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंत्रालय के प्रवक्ता अध्यापक डॉ. गौतम ने कहा कि संक्रमण की पुष्टि होने के बाद भी नियम पूर्वक आइसोलेशन में न रहने पर 6 महीनों तक की कैद सजा दी जाएगी। साथ ही प्रवक्ता गौतम ने साफ किया कि परीक्षण के लिए स्वाब दिए लोगों को भी नतीजा न आने तक आइसोलेशन में रहना होगा। सरकार द्वारा कोविड-19 का संक्रमण समुदाय स्तर पर फैलने के विषय में एंटीबॉडी परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की एपिडेमियोलॉजी तथा संक्रामक रोग नियंत्रण महाशाखा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग में एंटीबॉडी परीक्षण के लिए विज्ञ सहित की प्रावधिक टोली को आज 7 प्रदेशों में भेजा है। महाशाखा के निदेशक डॉ. वासुदेव पांडे ने बताया कि इस परीक्षण के जरिए कोविड-19 के संक्रमण के स्तर के विषय में जानकारी मिल पाएगी। एंटीबॉडी परीक्षण के लिए समुदाय स्तर पर सेरो प्रिवेलेंस का अध्ययन किया जाएगा। विज्ञों के मुताबिक नेपाल में संक्रमण दूसरे स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर में ICU और ऑक्सीजन प्लांट सहित की सेवा को विस्तार किया जाएगा। मोरंग के विराटनगर वार्ड नंबर 12 में आज से संचालित कोविड-19 आइसोलेशन का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि विराटनगर में 1000 शैया वाली आइसोलेशन सेंटर को बनाया जाएगा। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व केंद्रीय कोषाध्यक्ष रामबाबू प्रसाई खनु परोदे प्रकाश की आज 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। स्वर्गीय प्रसाई में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उनका विगत 9 दिनों से ओम अस्पताल में इलाज चल रहा था। गांधीवादी नेता के रूप में पहचाने जाने वाले स्वर्गीय प्रसाई ने नेपाल की प्रजातांत्रिक आंदोलन के क्रम में 2026 साल से 2033 साल तक निर्वासित जीवन बिताया था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समय है व्यापारिक विश्राम का।
सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ, त्यही लिने मजाले चलाउने।
*1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली ने रसुआ के सैफ्रो बेस स्थित 22 मेगावाट क्षमता वाली चिले में एवं रसुआ और नुआकोट के आधार इलाके में बीते साल निर्मित 60 मेगावाट क्षमता के ऊपरी त्रिशूली एक विद्युत गृह का अवलोकन किया। ये जानकारी रसुआ के प्रमुख जिलाधिकारी हरिप्रसाद पंत ने दी। मंत्री गेवाली ने गलछी रसुआगढ़ी अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत की सैफ्रो बेसी मैलुंग और बेत्रावती खंड मार्ग का भी स्थलगत निरीक्षण किया था। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय के साथ नेपाल के लिए भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आज मुलाकात की। सिंह दरबार स्थित मंत्रालय में हुई मुलाकात में मंत्री भट्टराय और राजदूत क्वात्रा के बीच दो देशों के बीच की हवाई, पर्यटन और संस्कृति के विषय पर बातचीत हुई थी। इसी तरह कोविड 19 के कारण बंद काठमांडू और भारत के विभिन्न शहरों के बीच की उड़ानें जल्द ही सुचारू करने के विषय पर बातचीत हुई। संस्कृति के क्षेत्रों में पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर को विशेष धार्मिक तथा सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकास करने के विषय पर विचार विमर्श हुआ था। मुलाकात के दौरान मंत्री भट्टराय और राजदूत क्वात्रा दोनों ने रामायण सर्किट अवधारणा को जल्द ही क्रियान्वयन में लाने के लिए दोनों ही देश सकारात्मक होने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन WFP को साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेट राइस एंडरसन ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2019 में 88 देशों के करीब 9.7 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से सहायता पहुंची। नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए इस साल 318 नॉमिनेशन आए थे। इनमें 211 शख्सियतें और 107 संगठन शामिल थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। संगठन ने कोरोना के दौर में दुनिया भर में जरूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने में भी अहम भूमिका निभाई। कोरोना महामारी के दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। संस्था का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक खाना ही सबसे अच्छी वैक्सीन है। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,68,81,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,77,36,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 10,68,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण कर जनता की जीवन रक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। नेपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या पहुंची 1,00,000 से ऊपर, संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या हुई 600। कोरोना वायरस की पुष्टि होने पर आइसोलेशन में न रहने वालों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी। और साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।